धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर एक। ओ नमः सिद्धेश्वर, ओ नमः सिद्धेश्वर, ओ नमः सिद्धेश्वर, शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, अन्ताय मज्जहीनं, दशदशय चावधीरं, पडमजिनं वोच्छं नमिऊणन्तरम्, अनंतरुत्तुंगसन्नमैदुग्गेजम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम जीव स्थान है, अभी हमारा विषय अंतरानुगम, पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या एक पर हम आए हैं। यहाँ पर अभी जो हमने मंगलाचरण देखा ना, तो कहते अंत आई मध्य हीनम, आदि मध्य और अंत से रहित, अतएव अनंतर अनअंतर, अर्थात अनंत ज्ञान स्वरूप और दशद्ध सय चाव दीहिरम, दश शत के आधे, दशद्ध सय शत यानी दस के शत यानी वो हजार, उसके आधे यानी 500, धनुष ऊंचाई वाले अते वो उत्तुंग। ये धनुष कहां से निकाला, वो चाव है ना, चाव यानी चाप, चाप का अर्थ होता है धनुष। तथापि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म, अतएव अति दुर्ग्राह्य, ऐसे पढ़म जिनम प्रथम जिन श्री ऋषभनाथ को नमस्कार करके अंतर अनुयोग द्वार को कहता हूं, जिसमें अनंतर अर्थात अंतर रहित गुणस्थानों व मार्गणास्थानों का भी वर्णन है, तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात दीर्घ कालात्मक व सूक्ष्म अर्थात अत्यल्प कालात्मक अंतरों का भी कथन है, यानी उस एक समय का भेद होकर अंतर होगा तो भी उसका कथन करेंगे। देखो ये जो अनंतर, दीर्घ कालात्मक और सूक्ष्म, ऐसे तीन यहाँ पर विशेषण वो ऊपर भी लगाए हैं, अनंतर उत्तुंग और सूक्ष्म, और वही ये नीचे की लाइन में नमिऊण अनंतर अनंतरम अनंत उत्तुंग सन्नम एंड सूक्ष्म दुग्गेजम दुर्ग्राह्य, अतएव जो मति ज्ञान द्वारा दुर्ग्राह्य है। पहले में पहले भगवान का वर्णन किया और अभी वो क्या बताने वाले हैं, तो अंतर बताने वाले हैं। अभी तक हमने कालानुगम देखा था, काल में विशिष्ट गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा काल देखते, जैसे मिथ्या तो गुणस्थान का काल, नाना जीवों की अपेक्षा सदा काल, और एक जीव की अपेक्षा उसका हमने सादी सांस काल देखा था, एक अंतर्मूर्त से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब हमको क्या देखना है, अंतर यानी कोई मिथ्या तो गुणस्थान के छोड़कर अन्य गुणस्थान में चला और वापिस अर्लीएस्ट कब आ सकता है उसमें, या बहुत काल के बाद कब आ सकता है। नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर नहीं है, जिसमें हमेशा ही जीव पाए जाएंगे, तो अनेक जीवों की अपेक्षा उसमें कभी अंतर ही नहीं पड़ेगा, हमेशा मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव होंगे। परंतु एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का अंतर कब कहे गए, जो तो सम्यक तो प्राप्त के अंतर उसमें वापस फिर लौट के आया, तो उसको कहेंगे उसका वो अंतर एकजीव की अपेक्षा अधिक से अधिक। तो कहते सम्यक्त्व में रहा या सम्यक्त्व करके तीसरे में आया, फिर सम्यक्त्व में जैसे हम दो बार 66 सागर वगैरह देखते हैं, इस तरह से हम उसका जगन्य और उत्कृष्ट अंतर देखना है। वो हम देखेंगे हर गुणस्थान में, हर मार्गणा में उसकी बात चलेगी। तो अंतर अभी अभी तक हम काल की अपेक्षा विचार करते थे, अब अंतर की अपेक्षा विचार करना है। देखो ये फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आदि मध्य और अंत से रहित अतएव अनंतर, अर्थात अनंत ज्ञान स्वरूप, और दशशत के आधे अर्थात 500 धनुष ऊंचाई वाले अतएव उत्तुंग, तथापि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म अतएव अति दुर्ग्राह्य, ऐसे प्रथम जिन श्री ऋषभनाथ को नमस्कार करके अंतर अनुयोग द्वार को कहता हूँ, जिसमें अनंतर अर्थात अंतर रहित गुणस्थानों व मार्गणास्थानों का भी वर्णन है, यानी सभी गुणस्थानों का और सभी मार्गणाओं का वर्णन है, तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात दीर्घ कालात्मक व सूक्ष्म अर्थात अति अल्प कालात्मक अंतरों का भी कथन है, अतएव जो मति ज्ञान द्वारा दुर्ग्राह्य है। ये दुर्ग्राह्य सूक्ष्म अनंतर वगैरह वगैरह, वो उसके दो अर्थ किए ऋषभनाथ के, वो विशेषण भी बताए हैं, और वो कैसे कहूँगे अभी अंतर अनुयोग द्वार में उसमें भी वो शब्द लगाए हैं। काल यानी लगातार उसमें रहने का काल, अंतर यानी वो गुणस्थान छूट जाए जो अन्य गुणस्थान में चला जाए और वापस उसमें आवे, तो उसका अंतर कितना? मिथ्यात्व में लगातार रहने का वो काल, मिथ्यात्व छूटकर चौथे में गया या तीसरे में गया और फिर वापस लौटकर आया, हाँ वो बीच वाला जो गैप है, मिथ्यात्व छूटकर अन्य गुणस्थान में रहकर परंतु वापस मिथ्यात्व में आना चाहिए, तब जाके अंतर कहेंगे। छोटा भी हो सकता है उत्तर, बड़ा भी हो, हाँ तभी बीच वाला अंतर। हाँ हमको अंतर घटित करना है तो आने वाला ही जीव लेना है, हर जीव के लिए अंतर होगा ये ऐसी की बात नहीं है, परंतु हम ऐसा ही सोचेंगे कि कोई अगर अर्लीस्ट आ सकता है तो कितना अंतर, और बहुत दूर लंबे काल के बाद आ सकता है मैं, दोनों जगन्य और उत्कृष्ट, उसके बीच वाले मध्यम सारे विकल्प हो। अब यहाँ सूत्र पढ़ते हैं। अंतरानुगमेन दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशेन, अंतरानुगम से यानी उसकी अपेक्षा से अभी निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश का अर्थ होता है कथन, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ यानी गुणस्थानों के जो अंतर बताएंगे उसको ओघ कहेंगे, और मार्गणा स्थानों में गुणस्थानों का अंतर बताएंगे वो आदेश होगा। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से, भाव के भेद से अंतर छह प्रकार का होता है। उनमें बाह्य अर्थों को छोड़कर अपने आप में अर्थात स्ववाचकता में प्रवृत्त होने वाला अंतर यह शब्द नाम निक्षेप है। अंतर ये शब्द वही उसका नाम निक्षेप। स्थापना अंतर सद्भाव और असद्भाव के भेद से दो प्रकार का है। भरत और बाहुबली के बीच उमड़ता हुआ नद सद्भाव स्थापना अंतर है। नद यानी बड़ा बड़ी नदी, नद यानी बीच में कोई पानी का प्रवाह बड़ा होगा, बीच उमड़ता नद बताए ना। अंतर इस प्रकार की बुद्धि से संकल्प करके दंड बाण धनुष आदि असद्भाव स्थापना अंतर है, अर्थात दंड बाणादि न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अंतर की, यह अंतर इतने धनुष है ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं उसे असद्भाव स्थापना अंतर कहते। क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई नदी है, नदी के इस पार है उस पार है, उनके बीच में तो वो नदी का अंतर है, तो वो तो सद्भाव हो गया। और दूसरी ओर हम कहेंगे आपके बीच में कितना अंतर है, तो हम कहेंगे 4 फुट का अंतर है, या 4 फुट के बदले 1-1 फुट का कोई माप बताए ना हम, या हम कहेंगे इतने बाण वाला, एक चार बाण का अंतर है तो चार बाण का, यहाँ कोई बाण नहीं रखे गए, या इतने धनुष का अंतर है तो यहाँ कोई धनुष तो नहीं रखे, वो यूनिट बनाए हमने, ये तो नाम स्थापना पर घटित करे। अभी द्रव्य निक्षेप लगाना है, द्रव्य अंतर आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है, हम हमेशा इसी पद्धति से निक्षेप लगाते आए हैं। अंतर विषयक प्रावृत के ज्ञायक तथा वर्तमान में अनुपयुक्त पुरुष को, यानी उसमें उपयोग नहीं है, अंतर संबंधी आगम को जान रहे हैं परंतु अभी वर्तमान में उपयोग अन्यत्र है, तो उस जीव को क्या कहेंगे? द्रव्य आगम, हाँ, यानी आगम द्रव्य अंतर कहेंगे उसको, अथवा अंतर के प्रतिपादक द्रव्य रूप आगम को आगम द्रव्यांतर कहते हैं। ये बात यहाँ नहीं डाली ना, ये अथवा करके। हाँ बोलो, आपका क्या प्रश्न है? कौन सा? हाँ देखो, हमेशा हम नाम स्थापना द्रव्य भाव ये निक्षेप लगाते हैं, तो द्रव्य निक्षेप में हमने दो प्रकार की, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप है जिस किसी वस्तु पर हमको वो निक्षेप लगाने, यहाँ तो अपना विषय अंतर पर हम लगा रहे हैं, तो यहाँ कहेंगे आगम द्रव्य अंतर, नो आगम द्रव्य अंतर। आगम द्रव्य अंतर का अर्थ क्या हुआ? अंतर संबंधी प्रावृत, प्रावृत यानी हमारे आगम, उसको जानने वाला जो जीव है उस जीव को ही आगम द्रव्य अंतर कहेंगे। और अथवा कह के उन्होंने और एक विकल्प बताया है कि जो द्रव्य आगम है, हमारे ग्रंथ है, उसको भी हम कहते ना द्रव्य आगम कहते, उनको द्रव्य श्रुत कहते हैं, तो अंतर संबंधी द्रव्य श्रुत को हम आगम द्रव्य अंतर कहेंगे। अभी नो आगम द्रव्य अंतर देखते हैं। हमेशा हमने नो आगम के तीन भेद किए थे, नो आगम यानी वो जानने वाला जीव को यहाँ नहीं लेना है, तो नहीं जानने वाला ऐसा कौन सा लेना, या तो उसका शरीर, या जीव जो अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा, या इन दोनों को ही, जीव और शरीर दोनों को ही छोड़कर अन्य जो कुछ है तद व्यतिरिक्त। मूल तीन भेद होते हैं नो आगम के, मूल तीन भेद, एक है ज्ञायक शरीर यानी ज्ञायक जीव का शरीर, दूसरा है वही जीव परंतु वो भविष्य में करेंगे, भावी जीव तो वही है परंतु भविष्य में वो पढ़ने वाला है, और तीसरा है इनके अलावा अन्य कुछ, इसको कहते हैं तद व्यतिरिक्त। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो नो आगम द्रव्यांतर, यह कॉमन ही चाहिए ना, ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है, आधार में उपचार से प्राप्त हुई है अंतर संज्ञा जिसको, ऐसा ज्ञायक शरीर, यानी ज्ञायक शरीर क्या है, उस जीव का आधार है और उपचार से उस जीव को, उसको भी जीव जैसा उपचार करते हैं तो उस शरीर को ही कह देते हैं अंतर संज्ञा, उस शरीर को कह दी। जानने वाले जीव के शरीर तो कुछ नहीं जान रहा है, फिर भी उस शरीर को अंतर कह दिया। अंतर संबंधी शास्त्र को जानने वाले जीव के शरीर को अंतर संज्ञा कह दी, वो कौन सा निक्षेप है? नो आगम द्रव्य अंतर कहेंगे उसको। अब वो जो शरीर है उसके भी तीन भेद, एक वर्तमान का शरीर, एक भूतकाल का शरीर, और ये भविष्यकाल में जो आगामी भव में प्राप्त करेगा वो शरीर। तो ज्ञायक शरीर के भी भूत, वर्तमान और भावी तीन भेद हो जाते हैं, यही यहाँ लिखे हैं। ऐसे ज्ञायक शरीर भव्य, वर्तमान और संयुक्त के भेद से तीन प्रकार का है, भव्य यानी भावी, भविष्य में जो प्राप्त करेगा वो, वर्तमान यानी वर्तमान का शरीर, और त्यक्त यानी जो छोड़ के आया है भूत जिसको कहेंगे, ये जो भूत भावी और वर्तमान, ऐसे तीन भेद है एक्चुअली उसके। और जो भूतकाल में जो छोड़ के आया है वो किस तरह से छोड़ा है, चुत चावित और त्यक्त, इस तरह से उसके भेद होते हैं। यानी अपने आप छूटा वो अपने मरण से मरा है, या तो चावित छोड़ना पड़ा, या उसने स्वयं त्याग किया संन्यास मरण करके। उसके फिर प्रभेद बताए कि इस तरह से संन्यास लिया है। यहाँ तो केवल उसके भव्य वर्तमान और संयुक्त त्यक्त। भव्य का अर्थ होता है भावी शरीर, यानी भविष्य में जो शरीर धारण करेगा उसकी बात है। अभी शंकाकार पूछते हैं, अनाधारता से स्थित अर्थात वर्तमान में जो अंतर आगम का आधार नहीं है, ऐसे भावी शरीर के अंतरिक्ष संज्ञा का व्यवहार कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं कि वो शरीर अभी जानने वाला जीव कब है? इस वर्तमान शरीर में, तो इस शरीर को तो आधार कहो तो कोई बात नहीं है, परंतु वो जीव भविष्य में जो शरीर धारण करेगा उसको क्यों आप ये आधार कह रहे हो? उसको उसका तो उसके आधार से तो ये जीव अभी नहीं है, ये प्रश्न है। ये भावी शरीर में भी अंतर इस संज्ञा का व्यवहार कैसे करते हो? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कूर रूप पर्याय के आधार, कूर यानी भात, आधार न होने पर भी तंदुलों में यहाँ अर्थात व्यवहार में कूर संज्ञा पाई जाती है। यानी चावल जो है अभी पका नहीं है, तो फिर वहां पर भी उसको भात कहने की प्रथा है। क्या सीज रहा है तो भात, तो अभी तो चावल अभी तो चढ़ाया है ना, अभी भात कहाँ हुआ है? इस तरह से फिर शंका, भूत ज्ञायक शरीर के यह अंतर को व्यवहार कैसे, अंतर को व्यवहार का अंतर का व्यवहार, अंतर का व्यवहार चाहिए, इन्हें अंतर संज्ञा का व्यवहार कैसे बनेगा? भूत ज्ञाय ने अभी वर्तमान में वो जो शरीर जीव जान रहा है उसके भूतकाल का शरीर लिया है, वहां न तो वो जीव जान रहा था और न भी कोई फिर भविष्य में जानने का सवाल है, वो तो बीत चुका है ऑलरेडी, तो उसको भी अंतर संज्ञा क्यों दे रहे हैं? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि राज्य पर्याय के नहीं धारण करने वाले पुरुषों में भी राजा आता है इस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। यानी अभी जो राजा नहीं बनाया है, बना है, अभी बालक है, राजा का बालक है, उसको भी राजा कहने की पद्धति है, ये कहना चाहते। जैसे सेठ है तो नौकर वहाँ काम करते हैं तो सेठ के बालक को भी वो सेठ कह के पुकारते हैं, ये तो हमने देखा है सब जगह व्यवहार। भविष्य काल में, अब ये तो ज्ञायक शरीर के तीन भेद हो गए, ऊपर जो नए पैराग्राफ में तीसरी लाइन थी ना, नो आगम द्रव्यांतर ज्ञायक शरीर, ये एक भेद हुआ था, भव्य दूसरा भेद हो जाता है, और तीसरा तद व्यतिरिक्त था। वहां जो भव्य लिखा है अब उस संबंधी बात बताएंगे। भव्य ने वो जीव वही लेना है, अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा। भविष्य काल में जो यानी जो जीव अंतर शास्त्र का ज्ञायक होगा, परंतु वर्तमान में अन्य पदार्थ के उपयोग के होते हुए भी अंतर शास्त्र के ज्ञान से रहित है, यानी वर्तमान में वो अंतर शास्त्र को नहीं जान रहा है, अंतर संबंधी आगम को नहीं जान रहा है, ऐसे पुरुष को भव्य नो आगम द्रव्यांतर कहते हैं। परंतु केवली के ज्ञान में तो मालूम है उनको, तो यानी वो तो जानते हैं कि ये भविष्य में जानेगा, तो ऐसे जीव को। हाँ, अब ये तो भव्य हो गया ना, अभी तद व्यतिरिक्त पहले सब ज्ञायक शरीर के भेद बताए थे। ज्ञायक शरीर, फिर भव्य, फिर तद व्यतिरिक्त। अब ये आना पेज नंबर 3 पर। तद व्यतिरिक्त का अर्थ है ना वो जीव है ना शरीर है, इनको छोड़कर अन्य जो कुछ बातें होगी वो बताएंगे। वो तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर અને અન્ય દ્રવ્ય ને અન્ય દ્રવ્ય ને દ્રવ્યાંતર ને દ્રવ્ય નો આગમ જો હમને નો આગમ દ્રવ્ય અંતર કી બાત હૈ ને દ્રવ્ય નિક્ષેપ કી બાત હૈ તો તદ વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય અંતર અભી ઉસકે તીન ભેદ સચિત્ત અચિત્ત ઓર મિશ્ર કે ભેદ સે તીન પ્રકાર કા હૈ ઉનમેં સે વૃષભ જિન ઓર સંભવ જિન કે મધ્ય મેં સ્થિત અજિત જિન સચિત્ત તદ વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યાંતર કે ઉદાહરણ ક્યા કહેતે હૈ પહેલે તીર્થંકર ઓર તીસરે તીર્થંકર કે બીચ મેં દૂસરે તીર્થંકર હૈ वो तो सचित्त में आ जाए सचित्त और तद व्यतिरिक्त घनोदधि और तनुवात के मध्य में स्थित घनवात अचित्त तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है क्योंकि तीन वात वाले में से वो नीचे का और ऊपर का बीच वाला जो है वो दो वात वाले उनके बीच वाला है तो वो अचित्त कहेंगे उसको ऊर्जयंत और शत्रुंजय के मध्य में स्थित ग्राम नगरादिक मिश्र तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है ऊर्जयंत समझते गिरनार और ये शत्रुंजय गिरनार और शत्रुंजय के बीच में जो कोई गांव नगर वगैरह है उसमें मिश्र है ना क्योंकि उसमें तो अचित्त पदार्थ भी हैं सारे नदियां है पर्वत है सब है और मनुष्य भी रहते हैं अन्य भी जीव रहते हैं तो सचित्त अचित्त यानी वो तो मिश्र होगा क्षेत्रांतर और कालांतर ये दोनों ही द्रव्यांतर में प्रविष्ट हो जाते हैं क्योंकि छह द्रव्यों से व्यतिरिक्त क्षेत्र और काल का अभाव है यानी जो हमने आगम में ये निक्षेप के चार भेद बताए ना कौन से नाम स्थापना द्रव्य और भाव तो ये जो द्रव्य अंतर जो कहा उसी में वो क्षेत्र अंतर और काल अंतर गर्भित हो जाता है क्योंकि जो अभी द्रव्य में अंतर है तो ये तो काल भी उसमें वो गर्भित हो जाते हैं अब भावांतर को देखेंगे भावांतर आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार के जैसे हमने द्रव्यांतर के दो भेद किए थे द्रव्य निक्षेप के जैसे भाव निक्षेप यानी भाव और भाव अंतर के ऊपर वो भाव वाला निक्षेप लगा रहे हैं वो भी आगम और नो आगम आगम यानी जानने वाला जीव उसी में उपयोग वाला और नो आगम यानी वो तो नहीं जानने वाला ऐसा ले लेंगे उसमें अन्य जीव अन्य कुछ ले लेंगे उसके देखो भावांतर यानी वर्तमान में उसकी वैसी पर्याय होनी चाहिए द्रव्य में भूत भविष्य की पर्याय को भी हमने कहा था या उसके शरीर को भी कहा था अब यहाँ भावांतर आगम और नो आगम के भेद से दो प्रकार का है अंतर शास्त्र के ज्ञायक और उपयुक्त यानी उसके जानने वाला भी चाहिए और उसी में उपयोग जिसका लगा है उस जीव को उस पुरुष को आगम भावांतर कहते हैं हाँ अथवा भाव रूप अंतर आगम को आगम भावांतर कहते हैं जैसे द्रव्य रूप यानी जो हमने द्रव्य श्रुत द्रव्य आगम जो कहा था ग्रंथ उसको हमने द्रव्य अंतर कहा था मेरे भाव रूप यानी वो भी उसका जो ज्ञान की पर्याय है वो भाव रूप हो जाएगी अंतर आगम को आगम भावांतर कहते हैं औदयिक आदि पांच भावों में से किन्हीं दो भावों के मध्य में स्थित विवक्षित भाव को नो आगम भावांतर कहते हैं यानी भावों में जो अंतर है उसका नो आगम भावांतर कह दिया यहाँ पर जैसे हमने क्रम अगर ऐसा कहा उदयिक क्षमिक क्षयिक तो उदयिक और क्षयिक के बीच में जो है उसको कहेंगे वो दो भावों के बीच वाला हम किसका उसका क्रम कैसे रखते हैं उसके अनुसार वो कहेंगे उसको अब शंकाकार पूछते हैं कि बहुत हो गए ये भेद और प्रभेद अब इस अंतर नामक जो अभी हम आगम पढ़ने जा रहे हैं जीव अंतरानुगम तो यहाँ कौन से अंतर की बात बताने वाले हो ये प्रश्न पूछ रहे यहाँ पर किस प्रकार के अंतर से प्रयोजन है समाधान नो आगम भावांतर से प्रयोजन है उसमें भी अजीव भावांतर को छोड़कर जीव भावांतर प्रकृत है, क्योंकि यहाँ पर अजीव भावांतर से कोई प्रयोजन नहीं है, यानी अजीव संबंधी भावों का अंतर उसमें कोई प्रयोजन नहीं है उनका। अभी अंतर के लिए और कौन कौन से शब्द आते हैं वो बात बता रहे हैं। अंतर, उच्छेद, विरह, परिणाम अंतर गमन, नास्तित्व गमन, अन्य भाव व्यवधान, ये सब एकार्थवाची नाम है। इस प्रकार के अंतर के अनुगम को अंतरानुगम कहते हैं। अंतर का अनुगम, अनुगम यानी उसका आगम के अनुसार उसका जो यथार्थ ज्ञान करना है हमको, वो अंतर अनुगम। उस अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, क्योंकि निर्देश द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने वाला है, यानी गुणस्थान में और मार्गणास्थान में विस्तार से उसका भेद करके बताने वाला है। शंकाकार, तीन प्रकार का निर्देश क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि तीसरे प्रकार का कोई नय ही नहीं है। फिर शंका, यह भी कैसे जाना? उसका समाधान, संग्रह ने सामान्य और असंग्रह ने विशेष को छोड़ करके किसी अन्य नय का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता। संग्रह करना नहीं, इकट्ठा सामान्य से बताना और उसके भेद करके कहना विशेष, तो इसी में सब गर्भित हो जाते हैं कि इनको, इन दो के अलावा अन्य कोई नय का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं है। इस उक्त प्रकार के शंका समाधान को मन में धारण करके सूत्रकार ने ओघ से और आदेश से ऐसा पद कहा है। पद यानी शब्द। फिर शंकाकार पूछते हैं, एक ही निर्देश करना पर्याप्त था? इन्हें ओघ से बताते या आदेश से बताते, दोनों दोनों क्यों बता रहे हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि एक निर्देश से दोनों नयों के अवलंबन करने वाले जीवों के उपकार करने में उपाय का अभाव है, यानी दोनों नयों की अपेक्षा से उसका जो कथन करते हैं या शिष्य समझना चाहते हैं, तो एक नए के कथन करने पर वो बात नहीं हो सकती। अब ये तो एक नंबर के सूत्र के संबंध में उहापोह हुआ, अभी दो नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। अभी यहाँ से अंतर बताना प्रारंभ करेंगे। ओघेना, ओघेना ने गुणस्थानों में कहेंगे। अभी मिच्छादिथिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नत्थि अंतरम निरंतरम। ओ उसे मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। हमने देखा था सांतर गुणस्थान, यानी जिन गुणस्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर पड़ सकता है उनको सांतर गुणस्थान कहते हैं। ब्रह्मा, आपको मालूम है कौन कौन से ऐसे सांतर गुणस्थान है जिनमें अंतर पड़ सकता है नाना जीवों की अपेक्षा? दूसरा, तीसरा और चौदवा, हाँ, और आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, यानी उपशमक चार और क्षपक चार और वो अयोगी वाले। निरंतर कौन से है? तो पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और तेरवा। इसमें हमेशा ही नाना जीव हो गए। नाना यानी अनेक जीव, पूछना, हाँ, कोई नई बात ख्याल में आई या भूल गए तो पूछना जरूर। नाना जीव ने अनेक जीव, अलग अलग जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव उसमें हमेशा रहेंगे। पहला, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, तेरवा, यानी तेरहवें गुणस्थान वाले का अर्थ क्या है? वो अरिहंत भगवान है, उसमें तीर्थंकर भी आ गए, वो हमेशा ही पाए जाएंगे। एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि अभी कोई तीर्थंकर ही नहीं है, अरिहंत भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने देखा लाखों तो हो सकते हैं अरिहंत, मैक्सिमम उनकी संख्या लाखों में है। यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम हमारे आजू बाजू देखते कोई है कि नहीं है, लाखों, अभी विदेह क्षेत्र में लाखों हो गए ना, जहाँ एक तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहां पर भी कितने करोड़ों लाखों, लाखों केवली हो, करोड़े नहीं, लाखों में हमने संख्या देखी, तीसरे पुस्तक में क्या देखा हमने? प्रत्येक गुणस्थान में मैक्सिमम संख्या देखी थी हमने, वो 800,000 कुछ आती है ना। देखो यहाँ कह कहते हैं, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की बात चल रही है। जैसा उद्देश होता है वैसा निर्देश होता है, इस न्याय के रक्षणार्थ ओघ से यह पद कहा है। यानी हमें कथन करना है तो हमारा कथन क्या करना चाहिए? तो ओघ से कथन करना है, इसलिए ओघ शब्द डाल दिया। मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए है। यह मिथ्या तो गुणस्थान की बात चल रही है, इसलिए वो गुणस्थान का नाम बता दिया। कितने काल होता है इस पृच्छा का फल इस सूत्र की प्रमाणता का प्रतिपादन करना है। प्रमाणता पहले बताया था कि डायरेक्ट आचार्य ऐसे इतना काल होता है इतना अंतर होता नहीं बताते, कितना होता है पूछकर फिर उसका उत्तर देते हैं। वही उसका अर्थ ही ये हो गया कि जो भगवान की बताई हुई जो बात है ये उन्होंने अपने मन की नहीं बताई। शंका, नाना जीवन इस प्रकार का एक वचन का निर्देश बहुत से जीवों में कैसे घटित होता है? उसका समाधान, क्योंकि ऊपर लिखा ना नाना जीवन पड़ुच्च, नाना जीवों की अपेक्षा, जीवों की नहीं नाना जीव की अपेक्षा ऐसा कहेंगे, तो सबके मिलकर एक वचन कहने की पद्धति है, पूरा समूह ले लिया उसका। तो कहते नाना जीवों में स्थित सामान्य की विवक्षा से बहुतों के लिए भी एक वचन के प्रयोग में विरोध नहीं आता, अंतर नहीं है। अर्थात मिथ्यात्व पर्याय से परिणत जीवों का तीनों कालों में विच्छेद विरह या अभाव नहीं होता, यानी हमेशा ही मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे। यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। अंतर के प्रतिषेध करने पर, मैंने अंतर का निषेध किया ना, अंतर नहीं ऐसा बताया, वह प्रतिषेध तुच्छ अभाव रूप नहीं होता है किंतु भावांतर भाव रूप होता है। इस बात के जतलाने के लिए निरंतर पद का ग्रहण किया है। ऊपर क्या बताया, नथ्य अंतरम, अंतर नहीं, और फिर बताया निरंतर है। निरंतर कहने के कि ये अंतर नहीं कहने से निरंतर शब्द घटित हुआ था, फिर भी थोड़ा भी अंतर नहीं है बताना है। यहाँ लिखा है ना तुच्छ अभाव रूप नहीं होता, इन्हें बिल्कुल मामूली सा अभाव होगा तो उसको गिनते भी नहीं है, वैसा नहीं है, बिल्कुल निरंतर है, अंतर बिना का है, स्पष्ट कर दिया। प्रतिषेध से व्यतिरिक्त होने के कारण विधि रूप से मिथ्या दृष्टि जीव सर्वकाल रहते हैं, यह अर्थ कहा गया है। क्या कहना चाहते हैं? अंतर नहीं है, यह निषेध रूप हो गया। अंतर का निषेध किया तो उसका क्या अर्थ क्या हुआ? सदा काल होते हैं, यह 80 रूप कथन है, और अंतर में निषेध नहीं है, बात तो वही बतानी है। अथवा पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए अंतर नहीं है इस प्रकार का प्रतिषेध वचन, और द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए निरंतर इस प्रकार का विधिपरक वचन कहा गया है। यानी नास्ति का कथन और अस्थि का कथन इस तरह से, अंतर नहीं है यानी सदाकाल है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यह अर्थ आगे के सभी सूत्रों में भी कहना चाहिए। अब ये तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं बता चुके, अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मुहूर्तम, ये अतो हुआ है अंतो करना, ये पड़ुच्च भी उसमें बहुत इकट्ठा हुआ है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर काल अंतर मुहूर्त है, मात्र अंतर नहीं कहे अंतर का काल, क्योंकि अंतर हम काल में गिन रहे हैं ना, इसलिए अंतर काल कहने की पद्धति है। क्योंकि अंतर हम क्षेत्र में भी गिन सकते हैं। यहाँ काल का अंतर बता रहे हैं, कितने काल का अंतर है बीच में ये बता रहे हैं। तो जगन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व अविरत सम्यक सेमासयम और संयम में बहुत बार परिवर्तित होता हुआ, ये वैसा ही जीव लिया कि बहुत बार उसने मिथ्यात्व में और ऊपर सम्यक्त्व में प्राप्त किया है, आना जाना बहुत बार हुआ है, परिणामों के निमित्त से सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यानी मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व प्राप्त किया और वहां पर सर्व लघु अंतर्मूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी जो पहले से तीसरे चौथे या सातवें छठवें में बहुत बार गया ऐसा जीव लिया है वो, उसने समय तो प्राप्त किया और फिर वापस वो पहले में आ गया। वो नाना जीव एक ही बात है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को यहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम है यहाँ, दूसरे का नाम सासाधन है वो अलग। वो अनादि का भी मिथ्या दृष्टि है, कोई अनादि का होगा मिथ्यात्व, ये तो आपका जो हमने आपका मिथ्यात्व गुणस्थान कह रहे हैं कि आपका मिथ्यात्व परिणाम कह रहे हैं, हाँ ये मिथ्या दृष्टि भी गुणस्थान का ही नाम है, वही मिथ्यात्व गुणस्थान को ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक ही गुणस्थान के दो नाम है। यहाँ सर्वत्र मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाम मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं है, वो सादी मिथ्या दृष्टि सादी कहेंगे उसको, और जो अनादि का है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहेंगे। हम परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं और जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, परंतु यहाँ सर्वत्र गुणस्थान का नाम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, कहीं कहीं मिथ्यात्व गुणस्थान भी कह देते हैं। यानी सर्वजघन्य कैसा काल हुआ, पहले से यानी जो बहुत बार समय तो मिथ्यात्व में जा चुका है, समय तो प्राप्त किया और लघु अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में आ गया, ये जीव का काल लिया उसमें अंतर का काल। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है अंतर करने के पूर्व जो पहले का मिथ्यात्व था वही पुनः सम्यक्त्व के उत्तर काल में नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व काल में वर्तमान मिथ्यात्व के उत्तर काल में अर्थात सम्यक्त्व छोड़ने के पश्चात प्रवृत्ति होने का विरोध है, तथा वही पहला मिथ्यात्व उत्तर काल में उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तु के पुनः उत्पन्न होने का विरोध है, इसलिए सम्यक्त्व छूटने के पश्चात होने वाला अंतिम अर्थात दूसरा मिथ्यात्व पहले का मिथ्यात्व नहीं हो सकता है, इससे अंतर का अभाव ही असिद्ध होता है। मैंने वो तो एकदम वो मिथ्यात्व मिथ्यात्व में भेद करके बताया, वो पहले वाला मिथ्यात्व तो नहीं रहा, कुछ तो फर्क तो हो गया उसमें, ये कहना चाहते हैं। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं, उक्त कथन सत्य ही है यदि शुद्ध पर्यायार्थिक नय का अवलंबन किया जाए। शुद्ध पर्यायार्थिक यानी वो एक एक पर्याय की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो जुदी पर्याय है, वही मिथ्या तो कैसा होगा, शुद्ध पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा बात करेंगे, किंतु नयगम नय का अवलंबन लेकर अंतर प्ररूपणा की जा रही है, क्योंकि नैगम नय सामान्य तथा विषय विशेष इन दोनों को विषय करता है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है। यानी सामान्य से और विशेष से दोनों को विषय करने वाला होने से नैगम न एकम दोनों को ही टच करता है, उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अंतरकाल के पहले का मिथ्यात्व और पीछे का मिथ्यात्व, पीछे कहने पश्चात वाला, ये दोनों पर्याय है जो कि अभिन्न है। ये अभिन्नत्व यानी उनमें समानता क्या है? क्योंकि मिथ्या तो कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण, यानी दोनों में मिथ्या तो कर्म का उदय है वहां पर निमित्त रूप से। आप तो आगम और पदार्थों के अश्रद्धान की अपेक्षा, यानी उसका लक्षण पहले निमित्त भी बताया, उसका लक्षण क्या है? देव गुरु शास्त्र के अश्रद्धान है। आप तो यानी अरिहंत भगवान, आगम यानी उनका बताया हुआ शास्त्र, और पदार्थ जो है सात तत्व है उनके अश्रद्धान की अपेक्षा भी समानता है। तथा एक ही जीव द्रव्य के आधार होने से उनमें कोई भेद नहीं है। भेद किस अपेक्षा से नहीं है? कि दोनों में मिथ्या तो कर्म का उदय है, दोनों का ही लक्षण क्या है? देव शास्त्र गुरु और सात तत्व का अश्रद्धान है, और एक ही जीव में वो पाए जाते हैं। जीव तो वही है जो पहले मिथ्या दृष्टि था, वही जीव समय तो प्राप्त करके फिर मिथ्या दृष्टि हुआ, तो जीव वही होना, ये उनमें भेद नहीं है। अब और न पूर्व काल तथा उत्तर काल के भेद की अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायों में भेद है, क्योंकि इस काल भेद की यहाँ विवक्षा नहीं की गई है। यानी पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय ऐसा भेद भी यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि ये विवक्षा यहाँ पर नहीं है। इसलिए अंतर के पहले और सामान्य के अवलंबन से, यानी द्रव्यातिक नय के अवलंबन से संग्रह को प्राप्त मिथ्यात्व का, यानी वो दोनों ही मिथ्यात्व उसमें इंक्लूड हो गए, सम्यक तो पर्याय अंतर होता है यह सिद्ध हुआ। यानी दोनों और मिथ्यात्व और बीच में सम्यक तो पर्याय, यही अर्थ आगे सर्वत्र योजित कर लेना चाहिए। ये जगन्य अंतर देखा, अभी उत्तर बताएंगे। उत्कृष्ट अंतर उक्कस से न बे छावट्ठी सागरवमाणी देसुणानी। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम काल है। अब उसको ये समझाएंगे। इसका दृष्टांत, कोई एक तीरंज अथवा मनुष्य 14 सागरोपम आयु स्थिति वाले लांतो कापिष्ट कल्पवासी देव में उत्पन्न हुआ, वहां एक सागरोपम काल बिताकर दूसरे सागरोपम के आदि समय में सम्यक्त को प्राप्त हुआ, 13 सागरोपम काल वहां पर रहकर सम्यक्त के साथ ही च्युत हुआ और मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भाव में संयम को अथवा संयमा संयम को अनुपालन कर इस मनुष्य भाव संबंधी आयु से कम 22 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आरण अच्युत कल्प के देवों में उत्पन्न हुआ। 22 सागर में से वो मनुष्य आयु माइनस कर दी, क्योंकि यहाँ तो उनको 66 सागर घटित कराना है ना, इसलिए वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्य भाव में संयम को अनुपालन कर उपरिम ग्रहवेक में मनुष्य आयु से कम 31 सागरोपम आयु की स्थिति वाले अहमिंद्र देवों में उत्पन्न हुआ। वहां अंतर्मूर्त कम 66 सागरोपम काल के चरम समय में परिणामों के निमित्त से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। उसको मिथ्यात्व में नहीं भेजना, सम्यक में। 66 सागर में एक अंतर्मूर्त पहले ही तीसरे गुणस्थान में आ गया, तीसरे से फिर वापस चौथे में भेजेंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः सम्यक्त को प्राप्त होकर विश्राम ले, च्युत हो मनुष्य हो गया। च्युत होने मरकर मनुष्य हो गया। सम्यक्त को प्राप्त होने के बाद इमीडिएट नहीं लाया, विश्राम लिया, क्योंकि मिथ्यात्व में से सम्यक्त को प्राप्त किया तो फिर अंतर्मूर्त पहले उसका मरण नहीं होता। उस मनुष्य भाव में संयम को अथवा संयमा संयम को परिपालन कर इस मनुष्य भाव संबंधी आयु से कम, काम नहीं वो कम, ऊपर भी वो अंतर्मूर्त वाला शब्द है ना, मुंह के ऊपर रफार चाहिए था, हु के ऊपर नहीं था। अंतर्मूर्त मनुष्य भाव संबंधी आयु से कम 20 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आनत प्राणत कल्पों के देवों में उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रम से मनुष्यायु से कम 22 और 24 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त कम 266 सागरोपम काल के अंतिम समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी अंतर्मूर्त कम रखना है, पूरे 66 सागर हो जाते हैं तो वो तो शायिक होने वाला ही पूरे 66 सागर तक रह सकता है। इस प्रकार से अंतर्मूर्तकम 266 सागरोपम काल प्रमाण अंतर प्राप्त हुआ। यह पूर्व में बताया गया उत्पत्ति का क्रम अव्युत्पन्न जनों के समझाने के लिए कहा है। क्या कहा? यही पकड़ के नहीं बैठना। देखो इसमें कहा ना धवला में कहा ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो मनुष्यायु क्यों कम गई हर बार, तो हमें वो केवल देवों की आयु गिनने में आसान हो जाएगा। 66 सागर गिनना था इसलिए ऐसे आयु के साथ उत्पन्न हुआ कि वो तो वहां की आयु माइनस मनुष्य आयु, ये जरूरी नहीं ना। वैसा वो नीचे ऊपर का सब मिलाकर 66 सागर हो जाएगा। ये तो गिनाने के लिए कुछ नहीं, अंतर्मूर्त में प्राप्त करेगा फिर भी 66 सागर तो होगा ना। जहां कहीं से गिनो आप 66 सागर वहां से गिन सकते हैं, पर ये कैसे गिनती करेंगे, कहां से कितना छोड़ना कितना ग्रहण करना है। 100 साल की आयु वाले को भी जो मनुष्य ने प्राप्त किया वो भी 66 सागर तक तो रह सकता है ना, 266 सागर, उसका कैसा कैलकुलेट करेंगे। कहीं थोड़े वो तो अव्युत्पन्न शिष्यों के लिए बताए ना, जिनको कुछ मालूम नहीं है उसको आसानी से समझ में आवे, इसलिए ये बात बताइए। परमार्थ से तो जिस किसी भी प्रकार से कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी आयु वाला हो, कितना भी हो, हो सकता है कि 100 साल का आयु वाला मनुष्य भी हो, कहीं पर भी हो, 8वीं साल में समय को प्राप्त किया ऐसा भी होगा, और फिर उसके आगे गिनो आप तो गिनने के लिए आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने वो देवों की आयु गिनाई वहां पर। तो परमार्थ से तो जिस किसी भी प्रकार से 266 सागरोपम काल पूरा करना चाहिए। तो ये बात वहां पर भी लेना है, ये जो देव के इतने भव, नरक के भव इतने, ये जो हमेशा कहते हैं इतने होने चाहिए, ऐसे थोड़े ही वो जो 2000 सागर में जब गिनते हैं तो नारकी के होने ही चाहिए, देव के होने चाहिए, ऐसा कहाँ है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये भी हो सकता है कि उसका एक भी नारकी का भव नहीं हो और देव मनुष्य तीरियन चौंक के भव करता रहे। ये भी हो सकता है कि देव का एक भी न भव और मनुष्य तीरियन से न रख के भव करता रहे, ये भी हो सकता है जब वो त्रस हुआ है तब। हाँ, तीरियन से के भव तो करना ही पड़ेगा, मनुष्य एक भी न हो ये हो सकता है। यानी अव्युत्पन्न जनों के समझाने के लिए होता है। अव्युत्पन्न ने भी नया शिष्य है उसको समझाने के लिए। यानी अभी उसको कुछ मालूम नहीं है तो उसको आसान तरीका करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ते देखो। शासन सम्मादिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समय। देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा कि सदाकाल रहते। काल में हमने क्या देखा था, शासन में एक समय से लेकर पल्ले का असंख्यात होगा उसका काल गिनाया था। यहाँ अंतर देख रहे, यानी एक भी जीव उस गुणस्थान में न हो ऐसे कितने काल तक हो सकता है। तो कहते जगन्य एक समय का अंतर, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी, उत्कृष्ट बाद में हम देखेंगे इसमें से। शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का वो जी बराबर करना, अंतर कितने काल तक होता है। तो कहते नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय होता है। यानी कोई एक या अनेक जीवों ने शासाधन प्राप्त किया, शासाधन का काल पूरा करके वो चले गए और फिर एक समय के लिए कोई भी जीव शासाधन में नहीं आया, ये हो सकता है। इसको कहेंगे नाना जून की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय का। जैसे पहले शासाधन समय दृष्टि का अंतर कहते हैं, दो जीवों को आदि करके, यानी दो से लेकर, क्योंकि अनेक जीव लेना है ना, एक एक अधिक के क्रम से पल्लवपुंज के असंख्यात भाग मात्र विकल्प से, ये हमने आवली का असंख्यात भाग क्यों गिना था, ये तो हर बार वो पल्ले के असंख्यात भाग लिखे हैं। उपशम समय दृष्टि जीव, देखो हमने शासाधन में कौन जीव आते हैं, तो औपशमिक सम्यक्त्व से गिर कर आते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है, कर्म उपशमित है, तो समय अनंतानुबंधी के उदय से शासाधन हो जाता है। तो इतने जीव वहां होंगे ना, एट ए टाइम कितने जीव आ सकते हैं, दो या अधिक, नाना जीव कहना है, इसलिए दो से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कितने भी हो सकते हैं। तो इतने जीव उपशम समय दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व के काल में एक समय को आदि करके अधिक से छह अवली काल के अवशेष रहने जाने पर शासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। यानी हरेक का अपना अपना कुछ अलग अलग शासाधन का काल होगा, वो शासाधन में आ गए। जितना काल अवशेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को छोड़ा था, उतने ही काल प्रमाण शासाधन गुणस्थान में रहकर वे सब जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। और यानी इतने जीव, जीवों की संख्या, यानी एट ए टाइम कितने जीव हो सकते हैं शासाधन में, एक सौ, हाँ शासाधन की संख्या इतनी है ना एट ए टाइम, शासाधन में जीवों की संख्या कितनी है, चारों गतियों के जीव लेना है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, होने दो ना, एक समय में भी जा सकते हैं ना, उसमें क्या है, छह अवली तक ही आने चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है, एक के बाद एक हो या एट ए टाइम हो, हाँ। कल तो हमने उतने बार भी देखे थे ना, काल में क्या गिना था, पल्ले के असंख्या से भाग बार जीव उसमें उत्पन्न होते रहे, ऐसा भी लिया था मैंने, उसने जीवन से उसका काल भी उससे असंख्या गुना लिया था। ये काल की बात आई थी, यहाँ तो अंतर की बात देख रहे हैं हम। यानी अभी क्या हुआ, सारे जो कोई जब कभी आए थे एक समय वाले हो या छह अवली वाले, सब अभी मिथ्यात्व में चले गए। अब तीनों ही लोकों में शासाधन समय दृष्टियों का एक समय के लिए अभाव हो गया, कोई अभी शासाधन में नहीं आया, भले औपशमिक समयत्व में हो कोई हो, पर अभी शासाधन में कोई नहीं आया है। पुनः द्वितीय समय में अन्य सात आठ जीव अथवा आवली के असंख्यात भाग मात्र जीव, अथवा देखो अथवा अथवा करके क्या लिखा, पल्लवपुंज के असंख्यात भाग प्रमाण उपशम समय दृष्टि जीव, क्योंकि उपशम समय तो वाले इतने ही लिए, शासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार शासाधन गुणस्थान का एक समय रूप जघन्य अंतर प्राप्त हो गया। एक समय के लिए कोई शासाधन में नहीं था, फिर इतने जीव आ गए।
एक समय में संदेश को प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या अवली के असंख्यात,
वो भी पल्ले के असंख्यात भाग हमने देखी थी, अभी काल के प्ररूपणा में देखी थी, सर्वत्र पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण लिया था, अथवा करके अवली का असंख्यात भाग बताया उन्होंने। ये तो शासाधन का अंतर देखा जघन्य एक समय, आवली तो बहुत छोटी है ना, पल्ले बहुत बड़ा है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का जघन्य अंतर कहते हैं। 7-8 जन अथवा बहुत से सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व संबंधी काल के क्षय से सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को सभी के सभी प्राप्त हुए, यानी जो तीसरे गुणस्थान में थे कुछ चौथे में चले गए, कुछ पहले में चले गए, अब तीसरे गुणस्थान में एक भी जीव नहीं रहा, ऐसी पोजीशन हो गई। और तीनों ही लोकों में सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव एक समय के लिए अभाव रूप हो गए, यानी चारों गति में एक भी जीव तीसरे गुणस्थान में नहीं हो, ये बात हो गई। पुनः अनंतर समय में ही, यानी इमीजिएट नेक्स्ट, एक समय का गैप छोड़कर फिर मिथ्यादृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि 7-8 जीव अथवा बहुत से जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व का एक समय रूप जघन्य अंतर प्राप्त हो गया। अब इन दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। उपकस्य न पलिदो व मत्स असंख्येत यदि भागो, उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात वा भाग है। उनमें से पहले सासादन समय दृष्टि का उदाहरण कहते हैं। 7-8 जन अथवा बहुत से उपशम समय दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुए। उन सासादन समय दृष्टि जीवों के द्वारा आय और व्यय के क्रमवश, आय और व्यय ने कोई नए नए सासादन में आते गए, उसमें से चले गए, फिर आते रहे, फिर चले गए, पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र काल तक सासादन गुणस्थान का प्रवाह अविच्छिन्न चला। ये हमने काल में देखा था, लगातार उसमें रहने का नाना जीवन की अपेक्षा काल पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक। पुनः उसका काल समाप्त होने पर दूसरे समय में ही वे जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए और पल्लवम के असंख्यात वे भाग मात्र काल तक के लिए सासादन गुणस्थान, ये गैप छूटा है आगे पढ़ना, अंतर को प्राप्त हो गया, यानी इतने काल तक उसमें कोई जीव नहीं आया। पुनः इस पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर काल के अनंतर समय में 7-8 जन्म अथवा बहुत से उत्तम समय दृष्टि जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण सासादन का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हुआ। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतरकाल कहते हैं। उत्कृष्ट अंतर के योग्य नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व काल के व्यतिक्रांत होने पर क्या कहते हैं? ये उत्कृष्ट अंतर तभी होगा जब उत्कृष्ट काल होगा बीच में, नहीं समझे आप? सम्यक मिथ्यात्व में रहने का काल कितना, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मोह, मान लेते एक के बाद कोई ऐसे आते रहे और एक साल भर तक ही उसमें रहे और बीच में अंतर पड़ा, तो वो उत्कृष्ट अंतर नहीं हो सकता। उत्कृष्ट अंतर के लिए उत्कृष्ट काल बिताने के बाद उत्कृष्ट अंतर पड़ेगा, ये कह रहे हैं। फिर से देखो, पढ़ो, उत्कृष्ट अंतर के योग्य नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व काल के व्यतिक्रांत होने पर, यानी नाना जीवों की अपेक्षा जो पल्ले का असंख्यात विभाग प्रमाण उत्कृष्ट काल है तीसरे गुणस्थान का, उतना बीतने पर फिर उसमें उत्कृष्ट अंतर होगा। सभी सम्यक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र उत्कृष्ट अंतर काल के अनंतर समय में ही मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्यादृष्टि अथवा वेदक समय दृष्टि अथवा उपशम समय दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, यानी तीसरे गुणस्थान में आ गया। यानी वो उत्कृष्ट अंतर के लिए पहले उत्कृष्ट काल बताया, फिर बाद में उत्कृष्ट अंतर घटित किया। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। ये समझ में आई दोनों गुणस्थानों की बात? ये नाना जीवों की अपेक्षा हमने देखी, अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। यानी कोई जीव सासाधन में आया, देखो आप इमेजिन करना, सासाधन में कब आता है? उपशम समय, यानी प्रथम उपशम से गिरकर आएगा तब सासाधन में आ गया। फिर दोबारा उसको सासाधन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर प्रथम उपशम प्राप्त करने। एक बार प्रथम उपशम होकर छूटता है तो फिर दोबारा उसको वेदक ही होता रहेगा बहुत बार। फिर दोबारा उपशम होने के लिए उसके वो जो कर्मों की स्थिति जो है वो बहुत घटाई, मिथ्यात्व में लगातार वो लंबे काल तक रहा, पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक, तब जाके फिर उसको दोबारा प्रथम उपशम हो सकता है और तब जाके वो सासाधन में आ सकता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर होगा पल्ले का असंख्या का भाव, जघन्य अंतर। और उत्कृष्ट कुछ कम अर्थ पुद्गल, क्योंकि उस समय भी वो सासाधन में आया, फिर गया, फिर समय को प्राप्त किया, फिर वो मोक्ष चला गया। अब यहाँ पढ़ेंगे, एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन पलिदोवमस असंख्य यदि भागो अंतोमोत्तम। यानी दूसरे के लिए, दूसरे गुणस्थान का एक जीव के लिए अंतर है जघन्य अंतर पल्ले का असंख्या का भाग, और तीसरे गुणस्थान में तो अंतर्मूर्त के अंतर से फिर दोबारा जा सकता है। यानी तीसरे से पहले में आया और फिर तीसरे में गया, एक अंतर्मूर्त में जा सकता है। उसका अर्थ नीचे देखते हैं, सासाधन और सम्यक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लोपम के असंख्यात विभाग और अंतर्मूर्त है। यानी सासाधन के लिए पल्ले का असंख्यात विभाग और सम्यक मिथ्यात्व के लिए अंतर्मूर्त। जिस प्रकार से उद्देश होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है। इस न्याय से सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का अंतर पहले कहते हैं, उपशम सम्यक से पीछे लौटा हुआ कोई एक सासाधन सम्यक दृष्टि जीव कितने ही काल तक सासाधन गुणस्थान में रहा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हुआ। कितने ही काल तक, यानी कितने काल तक मनीषा? एक जीव कितने काल तक सासाधन में रह सकता है? वो तो नाना जीवों की बात है। सासाधन में एक समय से लेकर छह अवधि तक, ये उसका काल है ना। एक जीव इतना ही काल तक सासाधन में रह सकता है, फिर मिथ्यात्व को आता है और अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र काल से उपशम सम्यक को प्राप्त होकर, यानी उसके पहले वो उपशम ही सम्यक तो प्राप्त ही नहीं कर सकता, इतना अंतर बीच में जाएगा ही जाएगा। मिथ्यात्व तो में लगातार इतने काल तक रहेगा तो ये पॉसिबल है। उपशम सम्यक तो के काल में छह अवली अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हो, क्योंकि उसको अर्लीस्ट भेजना है ना सासाधन, इसलिए छह अवली पहले। इस प्रकार से पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतरकाल उपलब्ध हो गया। अब शंका पूछते हैं, पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण काल के स्थान में, यानी उसके बदले अंतर्मूर्त काल द्वारा सासाधन गुणस्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराया? उसका प्रश्न क्या है? एक अंतर्मूर्त में सासाधन क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न समझ में आया? उसका समाधान नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के बिना, सम्यक्त्व हुए सम्यक्त्व सब जगह सम्यक्त्व सम्यक्त्व ही लिखा है उन्होंने, क रह गया, क तो और वो चाहिए, उसके नीचे की भी लाइन में, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के बिना सासाधन गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है। फिर शंका, यह जी उपशम सम्यक्त्व को भी अंतर्मूर्त काल के पश्चात ही क्यों नहीं प्राप्त होता है? समझ में है ना? तो उसको उपशम सम्यक तो प्राप्त करा, समझ नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति की उद्वेलना करता हुआ, उद्वेलना का अर्थ होता है उल्टा संक्रमण, ये दो प्रकृतियां मिथ्यात्व में से तैयार हुई थी, अब दो उल्टा मिथ्यात्व रूप परिणमित होती रहेगी, उसको कहेंगे उद्वेलना। उल्टा उल्टा संक्रमण, ये संक्रमण का ही भेद है। यानी वो तो होते ही नहीं पल्ले के, उद्वेलना यानी संक्रमण, सम्य मिथ्यात्व और मिथ्यात्व जो सम्यक प्रकृति है वो उल्टा मिथ्यात्व में संक्रमित होती रहती है और वो कांडकों में संक्रमित होती है। फिर से प्रश्न पूछना। नहीं, संक्रमण के पांच अलग अलग नाम है, उद्वेलना इज ए टाइप ऑफ संक्रमण, उसमें ये उल्टा संक्रमण हो रहा है ना मिथ्यात्व में जाने के कारण कुछ प्रकृतियां ऐसे उल्टे रूप से संक्रमित होती है, अन्य भी कुछ संक्रमित होने वाली प्रकृतियां होती है, मालूम है क्या कुछ, आहारक वगैरह, आहारक आहारक अंगोपांग अभी, हाँ मनुष्य गति की भी वो 13 प्रकृति है उद्वेलना की, जो आहारक शरीर अंगोपांग मुनिराज बांधते हैं और ऐसे जो मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो संक्रमण होते होते नष्ट भी हो जाती है, इसको कहते उद्वेलना। तो कहते उद्वेलना करता हुआ, यानी उद्वेलना जब शुरू की तब उसकी स्थिति कितनी थी, देखो पहले मिथ्या दृष्टि था, जब औषमी समय तो प्राप्त किया, प्रथम औषम प्राप्त किया, अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बना के प्रायोगिक लब्धि में बाद में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, यानी उसकी कितनी अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति थी, वही जो मिथ्यात्व में आया तो उसकी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी, वो तो नया बंधेगा नहीं, मिथ्या तो भले बड़ा बंधेगा अधिक सागरों का, अब क्या होगा अंत कोड़ा कोड़ी यानी अनेक कोड़ा कोड़ी है ना, एक कोड़ा कोड़ी से थोड़ा कम, अब उसमें क्या होता है पल्ले के असंख्या तो विभाग प्रमाण इतने निषेक जो है वो उनकी जो संक्रमित होकर मिथ्या तो रूप होते रहते हैं, यानी इतने थोड़े 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 घटते घटते, यानी असंख्यात बार जब संक्रमण होगा ऐसा उल्टा तब जाके एक पल्ले प्रमाण घटेगी, तो यहाँ तो कितने पल्ले हैं, तो इतने सब घटते 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 कितनी घट रह गए अभी, अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को घात करके, अंत कोड़ा कोड़ी थी ना जब उपशम हुआ था तभी, उसको घात करते करते जब तक सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व से नीचे नहीं करता, यानी वो कितनी स्थिति रहेगी, वो दो प्रकृति की हो मिथ्यात्व की भले लंबी चौड़ी है, इन दो प्रकृतियों की स्थिति घटते 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 कितने दिन सागर जितने या थोड़े सागर जितने रहेंगे, एक इंद्रिय में चला जाएगा तो सागर जितने भी घटाएगा, द्विंद्रियों में वगैरह चले जाएगा तो सागर पृथक्त्व इतनी घटाएगा, तब तक इसलिए कि एक इंद्रिय जीव सागर तक घटाएगा, एक इंद्रिय जीव में वो सागर तक चली जाएगी, उसकी जितनी बनती हुई उतने तो चली जाएगी, और पृथक्त्व तो सागर द्विंद्रिय आदि के लिए, जब तक यह इतना नहीं करता है, अब उसको उपशम करना है ना, अभी तो क्या है अभी फिर भी उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं, अब एक साथ सबको उपशम कर सकता है, अर्लीस्ट सभी कर सकता है, आप कहेंगे और भी उद्वेलना होते होते नष्ट हो जाएगी, बाद में तो कभी भी कर सकता है, अर्धपुद्गल परार्थन के बाद भी कर सकता है, अर्लीस्ट कब कर सकता है कि जब वो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति घटते घटते सागर जितने करीबन सागर जितने रह जाएगी, अब क्या करेगा वो मिथ्यात्व भले लंबी चौड़ी है स्थिति वो भी प्रायोगिक लब्धि में अंत कोड़ा कोड़ी करेगा, और इन दो की स्थिति कितनी करीबन सागर जितनी, अब इन 3 प्रकृतियों का एक साथ अंतर करके उपशमाता है और औपशमिक समय को प्राप्त करता है, ये इसकी कंडीशन, ये अर्लीस्ट कब करता है उसकी बात, ये है क्योंकि स्थिति घटाना है तो स्थिति घटती है, तो उसके लिए स्थिति कैसे घटती है उनकी, उद्वेलना के द्वारा। तो एकेंद्रियों में उद्वेलना करते करते उसकी सागर जितनी रह जाएगी, और त्रसों में उद्वेलना करते करते वो सागर पृथक पर जितनी रह जाएगी, ऐसा है उसका। वैसे एक्चुअली वो तो ऐसा क्यों अलग अलग लिखा है वो पता नहीं है, क्योंकि वहां से फिर पंचेंद्र में आकर ही समय को प्राप्त करेगा, मन उद्वेलना करते हुए तो कहीं पर भी भटक रहा है। नहीं, वो द्विंद्रिय उसके भी नीचे कर सकता है, पर अर्लीस्ट की बात है, प्रथमोक्षम लिए की कंडीशन है। अब शंकाकार पूछ रहा है, यह जीव उक्त प्रकृति की स्थितियों को अंतर्मूर्त काल द्वारा घात करके सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व काल से नीचे क्यों नहीं करता, यानी उसके लिए इतना काल क्यों बिताया उसने, झट से कर देता ना। समाधान, नहीं, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण आयाम वाले तथा अंतर्मूर्त उत्कीर्ण काल वाले उद्वेलना कांड कौन से घात की जाने वाली सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की स्थिति का पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण काल के बिना सागरोपम अथवा सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति से नीचे पतन नहीं हो सकता। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये जो उद्वेलना होती है, जैसे हम स्थिति में भी देखें, स्थिति कांडक घात होते हैं, अनेक निषेकों के कांडकों में से वो घात होता है, यहाँ उद्वेलना ने संक्रमण होता है, तो एट ए टाइम कितने निषेकों में से पूरे के पूरे परमाणु नष्ट हो जाएंगे और मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे, तो उस कांडक का प्रमाण है पल्ले का असंख्यात्व अभाव, इतने निषेक लेना उसमें, इतने निषेकों में से प्रकृतियां और उसके भी लिए अंतर्मूर्त लगेगा, यानी एक अंतर्मूर्त में पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण जो स्थिति है उसमें से ये दो प्रकृतियां वो मिथ्यात्व रूप हो गई, फिर दूसरा कांडक शुरू हुआ, यानी एट ए टाइम पल्ले का असंख्यात्व भाग एक अंतर्मूर्त, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग दूसरा अंतर्मूर्त, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग तीसरा अंतर्मूर्त, परंतु पल्ले का असंख्यात्व भाग इतने ही निषेक एक अंतर्मूर्त में जाते हैं, तो एक पल्ले प्रमाण अगर निषेकों में से मिथ्यात्व होने के लिए कितना असंख्यात काल चला जाएगा, असंख्यात अंतर्मूर्त होगी ना, असंख्यात बार उसकी उदीर्णा इसको क्या कहा है उसमें उत्कीर्ण वाला, उत्कीर्ण काल है ना, उद्वेलना होने का काल जो एक कांडक रूप से ग्रहण किया है उतने की उद्वेलना होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, तो ऐसे कितने बार असंख्यात बार हो जाएगा तब एक पल्ले प्रमाण स्थिति में से मिथ्या तो बन गया। अब यहाँ तो कितना ही अंत कोड़ा कोड़ी में से केवल एक सागर या कुछ पृथक्व सागर बाकी रखना है, तो कितने अनेक सागरों को उसको, यानी करोड़ों सागरों को कोड़ा कोड़ी नहीं करोड़ों सागरों को उसको वो उद्वेलना कराना है, तो कितने असंख्यात बार हो जाएगा वो, उसके लिए पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण काल लगता है। फिर शंका, सासादन गुणस्थान से पीछे लौटे हुए मिथ्या दृष्टि जीव को संयम ग्रहण कराकर और दर्शन मोनी की तीन प्रकृतियों का उपशमन कराकर, देखो यहाँ क्या उसने आइडिया लगाई, समझ में आती है बात, ऐसा जीव लिया जो प्रथम ऑप्शन से सासादन में आ गया, सासादन में से मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाने के बाद वेदक सम्यक तो प्राप्त कर ही सकता है अंतर्मूर्त काल में, तो उसने संयम को धारण किया, सातवें गुणस्थान में सातवां छठवां चला, तो सातवां चला चला तो वेदक सम्यक दृष्टि है, अब उसको द्वितीय उपशम कराएगा, और द्वितीय उपशम करा के फिर लौट के आया उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे, वो तो अंतर्मूर्त में भी हो सकता है, अब उसको लाओ सासादन में, ये उसका कहना है। अभी हम पूरी शंका भी नहीं पढ़ी, अब पढ़ेंगे फिर से दोबारा, ख्याल में आई ना बात, सासादन सम्यक दृष्टि सासादन गुणस्थान से पीछे लौटे हुए, यानी सासादन गुणस्थान से गिरकर जो मिथ्यात्व में आए हैं मिथ्या दृष्टि जीव को संयम ग्रहण कराकर, ये संयम कैसा ग्रहण कराया, वेदक के साथ, यानी वेदक सम्यक दृष्टि के साथ, वेदक सम्यक को, और दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों का उपशमन कराकर, इसका अर्थ होता है द्वितीय उपशम करके, मुनिराज ही करते हैं ना, इसलिए यानी द्वितीय उपशम करा के, पुनः चारित्रमों का उपशम कराकर यानी श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़कर चढ़कर उतरा, उपशम चारित्रमों का उपशम करा और नीचे नीचे उतार कर, नीचे नीचे ने क्रम से नीचे आता ना, इसलिए नीचे नीचे कहा, तो छठे तक तो क्रम से नीचे आता ही आता है, उसके बाद पांचवे चौथे में भी जा सकता है। सांसाधन गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर क्यों नहीं बताया, ये उसका प्रश्न है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीवों के सांसाधन गुणस्थान में गमन करने का अभाव है। द्वितीय उपशम वाला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल यहाँ स्पष्ट लिखा है। दो मत है इसमें, यह कैसे जाना जाता है, भूत बलि आचार्य के इसी वचन से जाना जाता है, पर इसके भी बारे में दो राय है, कोई कहते हैं उसमें आता है, परंतु अंतर तो पल्ले का संख्या का भाग ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो बराबर है, क्योंकि सांसाधन का अंतर तो उतना है ही है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ये तो कल पढ़ेंगे क्या, दो तीन मिनट है, अच्छा इतना ही है ना, हाँ। सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर कहते हैं। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ और अंतर्मूर्त काल के पश्चात ही पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, चौथे में जाओ या पहले में, वापस लौटकर तीसरे में आया, इस प्रकार से अंतर्मूर्त प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गया। उक्कसेन अद्धपोगल पर्यट्टम देशुनम, उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी वो मिथ्या तो में ही रहा ऐसा कहेंगे हम उसको, या बीच में सम्यक तो भी प्राप्त किया है पर सांसाधन वाले ने वेदक होकर छूट गया, ऐसा भी ले सकते उसको, यानी उसको प्रथम ऑप्शन भी प्राप्त किया होगा बीच में फिर सांसाधन में नहीं आया, ऐसा भी ले सकते, कितने विकल्प हो सकते उसके अंदर, उनमें से पहले सांसाधन गुणस्थान का उदाहरण कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अधप्रवृत्तादि तीनों करण करके उपशम सम्यक्त को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छिन्न कर, यानी अभी उसका संसार अर्धपुद्गल रह गया, अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र किया, पुनः अंतर्मूर्त काल सम्यक्त के साथ रहकर वह सांसाधन को सांसाधन स रह गया, सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी सांसाधन का अंतर चालू हो गया और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण कर संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः उपशम सम्यक्त के काल में एक समय शेष रहने पर, यहाँ छह अवली नहीं कहा, एक समय कहा, क्योंकि हमको उत्कृष्ट अंतर चाहिए, सांसाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ, इस प्रकार से सूत्रोक्त अंतरकाल प्राप्त हो गया, पुनः मिथ्या दृष्टि हुआ, पुनः वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर, अभी उसको मोक्ष भेजना है ना अर्लीएस्ट में, तो वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, फिर अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन कर, फिर दर्शन मुनि का क्षय कर, फिर अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों में सहस्रों परिवर्तनों को करके उसको पहले क्षायिक बनाकर फिर उसको सातवें में भेजा, क्षपक श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त, सहयोग केवलियर अयोग केवली हो करके सिद्ध हो गया। यानी हर एक में वो अंतर्मुत अंतर्मुत रहा। इस प्रकार से एक समय अधिक 14 अंतर्मुत से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन सासाधन सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। ये तीसरे का हम कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। अश्विन।